अब हुआ क्या, नबी का जरा फैसला सुनिए। वो तो अपनी सी कर चुके, अल्लाह ताला अब नबी के जरिए से बात कैसे करवाते। फरमाया आयत नंबर 26, काल और बिन सुरनी बीमा कज़बूनी। नूह ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तू मेरी मदद फरमा। इस पर कि इन्होंने मुझे छुटलाया, और दूसरा इसका तर्जमा क्या कि इन्होंने मुझे झूठा करार दिया। ये है कार्य नबूवत। 7 किस्म के इल्जामों के जवाब में उनके मुंह नहीं लगे, क्या कहा, अल्लाह तू मेरी मदद कर। ये है बेहतरीन दरवाजा जिसको खटकाया जा सकता है। अल्लाह न करे आप पर दीन के नाम पर कोई इल्जाम लगे, और अगर कभी लगा तो रब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बूनी। अल्लाह तू जान और तेरे बंदे जाने, मैं तो एक लफ्ज नहीं बोलूंगा इनके खिलाफ। आप देखिए कैसे अल्लाह को जोश आया, फौरन जवाब दिया। फौहैना इलैहि अनिस्नाइल फुल्क बिअयुनिना वबहयिना, तो हमने इसकी तरह वही की कि हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बनाइए। फैजा जामरुना वफारत तन्नूर, फिर जब हमारा हुक्म आन पहुंचे और तन्नूर उबल पड़े। फस लुक फी हमिन कुल्ली ज़ौजिस्नैन, तो रख लेना इसमें तमाम मखलूक में से जोड़े। हर तरह के जानदार हैवानात, एक नर एक मादा, इनको कश्ती में रखना ताकि इनकी नस्लें महफूज हो जाएं और आगे से ये दुनिया चलती जाए। हाँ लेकिन वहलका, अपने घर वालों को भी बिठा लेना। मगर इल्ला मन सबक अलैहिल कौलु मिनहुम, हाँ मगर सिवाय वो उनके जिनके बारे में पहले से एक बात तय हो चुकी। क्या तय हो चुकी, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि वो डुबोए जाएंगे। ये एक और जगह भी कुरान में हम पढ़ेंगे कि जिनके नसीब में डुबोया जाना है, इशारा है बीवी और बेटे की तरफ जो मुशरिक थे, यानी जिनकी हलाकत का फैसला पहले से हो चुका, इनके बारे में ना बात कीजिए। हाँ वला तो खातिबनी फिल्लज़ीन ज़लमू, मगर मुझसे बात ना कीजिएगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया। ज़लमू के नीचे लिख लीजिए शरीकू या शरकू, उनके बारे में बात ना कीजिए जिन्होंने शिर्क किया, यानी आज जुल्म शिर्क के मानों में, क्योंकि उस दौर में अभी शिर्क ही आम था, कोई बाकी चीजें तो दिखती नहीं उनके अंदर। तो कहा कि इन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया उनके बारे में मुझसे बात ना कीजिएगा। और तो खातिबनी से मुराद सिफारिश है, बात ना करे मुराद कि उनकी सिफारिश ना कीजिएगा, उनके बारे में आप जुबान ना खोलिएगा। क्योंकि इन्नहुम मुग़रिकून, यकीनन वो सब गर्क किए जाएंगे, सब डुबोए जाएंगे, इन सब के नसीब में सिर्फ डूबना है। खैर फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। 28 فَإِذَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَمَّاكَ عَلَى الْفُلْكِ, फिर जब तुम और तुम्हारे सब साथी कश्ती में बैठ जाएं। इस तवईता का जो लफ्ज है ना, सवा से, दोनों किनारों से बराबर, हमवार हो जाओ, यानी सवार होने के बाद जमकर बैठ जाओ। तस्कीन की जा रही है, तसल्ली दी जा रही है कि फिक्र ना करो, तुम अजाब से बच जाओगे। तो क्या कहो, फकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिन कौमिल ज़ालिमीन, तमाम शुक्र उस अल्लाह का है जिसने हमें इस जालिम कौम से निजात दी। हाय हुर्रा नहीं करना, जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने, फलां जिंदाबाद और फलां की बड़ाई। पता क्या चला कि जब बंदे को जालिम कौम से, दुश्मन से निजात मिले, किसी आफाकी अजाब से बच के, मसलन सैलाब से आप बच गए, जलजले से आप बच गए, एक्सीडेंट हुआ सब मर गए आप बच गए, कोई भी ऐसा लम्हा आ सकता है कि जब हम मरते मरते बचे, तो अपनी तारीफों के गुण न गाओ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफें उसके लिए कि जिसने मुझे निजात दी जालिम कौम से। और साथ ही कह दो, वक़ुर रब्बी अंज़िलनी मुनज़लम मुबारकन, और दुआ करना है कि मेरे परवरदिगार मुझे उतार देना, बरकत वाला उतारना। देखिए हजरत नूह को पहले से तसल्लियां दी जा रही हैं कि तूफान तो बहुत सख्त आने वाला है, 6 महीने तक जमीन भी पानी देगी और आसमान से भी पानी आएगा, लेकिन आप बच जाएंगे। किसी को पता चले कि जिस जहाज में आप बैठ रहे हैं ये क्रैश हो जाएगा, लेकिन फिक्र नहीं करें आप बच जाएंगे, तो तसल्ली हो जाती है ना। अल्लाह ने नबियों के दिलों को पहले ढारस दी कि तुम तसल्ली रखो, जब उतरो तो कहना कि अनजिलनी मुनजलम मुबारकन, तू मुझे उतार बेहतरीन तरीके से उतारना, हमें कुछ पता नहीं कल क्या होना है, लेकिन वन तखैरुल मुनजिलीन, तू ही है बेहतरीन उतारने वाला। यानी अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे दी कि तू ये करेगा और ये सब कुछ तेरे साथ होने वाला है। अब आप देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये सारी तसल्लियाँ दे दी गई, और साथ ही हम सबको बता दिया आयत 30 में, इन्न फी ज़ालिकल आयात, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं, वइन कुन्ना लमुबतलीन, और यकीनन हम तो आजमाने वाले हैं। अल्लाह ताला की ये सिफत देखिए ज़रा, मैं इसको पढ़ती ना तो मेरा रंग उड़ जाता है अंदर से। अल्लाह मुबतला करने वाले, इब्तला का लफ्ज़ क्या है, बला से, आजमाइशों में डालने वाले। हम कहते हैं ना फलां उस चीज़ में मुबतला हो गया, अल्लाह कहते हैं किसी की जरूरत नहीं है कि किसी तकलीफ में वो मुबतला हो, हम हैं मुबतलीन। यानी दुनिया में इंसान पर कोई आजमाइश आती है तो उसका पीछे से माखस अल्लाह की ज़ात है। और मुबतलीन मुबतल की जमा, जांचने वाला, खरे और खोटे को अलग करने वाला। इब्तला उनसे इसम फाइल है जमा मुजक्कर में। अल्लाह की मशियत के तहत दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की आजमाइश होती है। बिल्कुल वही बात जो सूरत मुल्क के शुरू में कह दी गई, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने जिंदगी और मौत को बनाया ही इसलिए कि तुम्हें इसमें परखे कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। तो गोया कि अल्लाह की जात लोगों को परखती है। अब यहां आप देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात एक लिहाज से पूरी होती भी दिखती है, लेकिन असल में बात आगे भी आएगी दूसरों में। लेकिन हम जरा सी इन चीजों पे गौर कर लेते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की, सब बोल दें, 950 साल, 950 साल। इतनी तबलीग करने के बावजूद किसी को अपनी मर्जी से उस कश्ती पे सवार नहीं कर सके। नुकता है गौर का। आज लोग कहते हैं फुलां बड़े पहुंचे हुए हैं, अल्लाह उनकी मोड़ता नहीं है, अल्लाह के ऊपर उनका बस चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी बातें और रियासतें की। इस वाक्य से आपको और मुझे पता चलता है कि इंसान 950 साल भी दीन का काम कर ले फिर भी ना करे, मर्जी नहीं है, मर्जी अल्लाह की है। हम कैसे अल्लाह पर दावे कर सकते हैं? फिर आप देखिए कि नबियों की आजमाइश कितनी बड़ी है। अल्लाह ने उनको बताया ना सब डूब जाएंगे और तुम बच जाओ, अगर तुम्हारे घर वाले, क्या दिल पे गुजरी होगी नूह के जब खबर मिली और जब आंखों से डूबता देखा। पीछे सूरह हूद में पढ़ चुके हैं ना, पूरी वीडियो थी, आप कह लें कि विजुअलाइज करा दिया था सूरह हूद में कि बेटा कैसे डूब रहा है और बाप उसको पुकार रहा है। फिर इससे एक और बात पता चलती है कि ये जो दुआएं हजरत नूह ने मांगी हम भी मांग सकते हैं, कहीं भी जाएं ये पढ़ें, रब अदखिलनी मुदखला, जैसे पीछे सीखी थी, अब यहां अंजिलनी मुनज़िला मुबारकन। किसी काम पे जा रहे हैं, कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू है, कोई दीन का, कोई दुनिया का काम है, करते जाइए। फिर यहां देखिए लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का तरीका हिजरत बताया जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में जब कुछ छोड़ते हैं तो रोते धोते नहीं जाते, हाय मर गए दीन पे आ गए, हाय ये भी छूट गया, हाय ये भी छूट गया, बल्कि उस पे भी अल्लाह की तारीफ करते हैं। और ऐसे लोगों को डूबता देखकर ये नहीं कहा कि अल्लाह इनको बचा ले, क्यों? कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला उन लोगों से मोहब्बत कर ही नहीं सकता जो अल्लाह से मोहब्बत ना करे। ये अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि उनको यकीन है कि आज वक्ती जुदाई है, कल आखरत में हमेशा का मिलना होगा। तो यकीन कीजिए कि एक इंसान की जिंदगी में ये बहुत बड़ा एक वक्त आ जाता है कि जब दीन के नाम पे किसी को छोड़ना या दीन के नाम पे किसी को अपनाना होगा। फिर एक और बात जो इस हिस्से से हमें थोड़ी सी अपने लिए अमल की मिलती है कि भाई माँ समेन अभी हाजा फी मिलती है या फी आबाई ना, या हमने अपने बाप दादा के ऊपर नहीं पढ़ा। आप देखिए कि आज के दौर में आप देखिए लोग बहुत सारे वो काम करते हैं जो बड़े लोग नहीं करते थे। नित नई किस्म की दवाएं हैं, बड़े लोग हकीमों की गोलियां खाते थे। कभी किसी ने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे नाना दादा ने तो कभी ऑपरेशन नहीं कराया था, मैं एसी में नहीं बैठूंगी क्योंकि वो एसी में नहीं बैठते थे, मैं अखबार नहीं पढ़ूंगी वो पढ़ते नहीं थे, कभी नहीं होगा। मैं KFC नहीं खाऊंगी, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ना बाप दादा नहीं करते थे, मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। और मजे की बात देखिए, कल तक तो पीयर प्रेशर था ना, आज चाइल्ड प्रेशर है। बस दफा जब हम दीन पे आते हैं और अपने बच्चों को फिर समझाते हैं ना, तो फिर बच्चे आगे से कहते हैं अच्छा जी खुद तो सब कुछ कर लिया, हमारी बारी आई तो रोक दिया। अब इस पे जो माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं ना, उनके बच्चे उनके सर पे सवार हो जाते हैं, अच्छा जी आप तो ये करती थी, आप मेरी उम्र में थी तो क्या आप हिजाब करती थी? कहते हैं ना बच्चे बाज दफ ऐसे, तो उसका जवाब क्या दे, हाँ वाकई ये तो है, चलो फिर बेटा तुम भी कर लो ये काम। नहीं, सिंपल सी बात है, हाँ तुम्हारी उम्र में मैं हिजाब नहीं करती थी, तुम्हारी उम्र में मैं इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करती थी, तुम भी ना आज से करो, तुम्हारी उम्र में मैं वीडियोस नहीं देखती थी, तुम भी छोड़ दो। याद रखिए, जिसने भी आपके सर पर दीन के नाम पर कोई बड़ा बनना चाहा, आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। सोशल प्रेशर की जगह चाइल्ड प्रेशर इतना बड़ा हो गया कि हम अपने बच्चों से डरने लगे, हालांकि पूरे यकीन से कि हाँ हमें नहीं पता था, अब पता लग गया, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बाप दादा के नाम पे कोई गलत काम करे तो उन्हें कि नहीं, बल्कि अब आप ज्यादा अच्छे काम करके उनके लिए सदका जारिया बने, ताकि उनको अल्लाह ताला उस बुराई पे छोड़ दे। नानियां दादियां बर्थडे नहीं मनाती थी, आज अब बर्थडे मनाते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता। तो सारी बातों का खुलासा ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का एक धोखा होता है जो इंसान के दिल में डाल देता है। और ये जो लफ्ज है ना मंजिल, इसी में लफ्ज से कहते हैं नजील। नजील कहते हैं नया आया हुआ मेहमान, बिल्कुल जो मेहमान अभी आया है ना आपके घर में उसको कहते हैं नजील। नुजुल कहते हैं ना मेहमानी को। फिर थोड़ा अरसा जब मेहमान आपके घर में रह ले ना तो उसको दईफ कहते हैं, वो भी आगे आप पढ़ेंगे हजरत इब्राहिम के किस्से में आएगा। तो हजरत नूह के मुखालिफों को अल्लाह ने डुबो दिया, ऐसे लगता है कि शिर्क की गंदगी से जमीन को पाक किया। जैसे शादी के बाद भी पूरा घर धुलता है ना, क्योंकि कई तरह के लोग आए होते हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने यही किया उनके साथ भी कि उनको जमीन से पाक किया और पूरी जमीन को धो धुला के साफ कर दिया। फिर एक और ताना उन्होंने हजरत नूह को दिया था कि भाई आप तो हमारे ही जैसे हैं, जैसे हमें कोई आपके और हमारे अंदर फर्क नहीं है। तो आज भी ये सोच पाई जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो नेक लोगों को हमेशा गरीब देखना चाहते हैं, ज़कात देने वाला नहीं ज़कात लेने वाला देखना चाहते हैं। उनकी नजर में गुर्बत तकवा की अलामत है, वो कहते हैं कि इनके पास दुनिया का कुछ ना हो। तो याद रखिए कि गुर्बत तकवा का सर्टिफिकेट नहीं है और दौलत किसी की बेदीनी की अलामत नहीं है। अल्लाह ताला गरीब को भी सख्त दिल करके गुनाहगार कर दे और पैसे वाले को भी अल्लाह ताला दीन की दौलत दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में लोग दुनिया की दौलत और दीन की दौलत इकट्ठी होती नहीं देखते। किसी दीनदार के बारे में आप देखें, लोग अच्छा जी फुलां तो होटल में जाते हैं, फुलां की तो इतनी लंबी गाड़ी है इमाम साहब, और इतनी लंबी और थोड़ी ज्यादा ही लंबी कर देते हैं, इतनी लंबी गाड़ी में आते हैं। लंदन में तो वो मुड़ेगी नहीं गली में, करेंगे क्या उसका? तो कभी ये गलत फहमी ना रखें, कभी आप सब अपने लिए एक मेयार बनाए, क्योंकि अब कुरान के दाई बनने वाले हैं, आप ये पढ़ रहे हैं तो आगे जाके आपने भी तो इंशाल्लाह यही काम करने हैं। कभी किसी दूसरे दीनदार पे उंगली ना उठाएं प्लीज, आपका हम मसलक है कि नहीं, इवन अकीदे में कमी, शिर्क में, बिदत में, लेकिन जिसके साथ नाम दीन का आ जाए आप खामोश हो जाए। ये वो जाने, उसका रब जाने कि हमने किसी के हिस्से की जन्नत लेनी है क्या? कोई जन्नत अल्लाह की इतनी छोटी है कि अल्लाह ने अगर उसको दे भी दी तो हम उससे छीनना चाहते हैं? अपने काम से काम रखें, इसलिए कि जब तक हमारे दिल नहीं खुलेंगे दूसरों के मामले में, अल्लाह ताला हमारी बात में असर नहीं डालेगा, बरकत नहीं होगी। कभी इस तरह की बातों को सुनकर अग्रेसिव होकर परेशान होने की बजाय क्या करें, अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह जैसे तूने अंबिया कराम की मदद की थी इसी तरह तू हमारी मदद कर दे। फिर इसके बाद आप देखिए कि बाकी नबियों के किस्से इनडायरेक्ट हैं। अगली चंद आयतों में ये नहीं नाम लिए गए, जैसे पीछे हमने पढ़ा ना हजरत नूह के फौरन बाद किस नबी का नाम आता है पता है, याद है? हूद, यानी हजरत हूद का आता है, फिर उसके बाद हजरत सालेह का आता है, यानी कौम नूह के बाद जो दूसरी बड़ी कौम थी वो कौम आद थी, आद के बाद समूद थी, समूद के बाद फिर अगली कौमें थी। लेकिन यहां इशारतन अल्लाह सुबहान तला ने ये बात करके कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जब ये मामला हुआ, असल में यह कहानियां जो ना वो अंबार रसुल की निस्बत कसस और रसुल की तरफ ज्यादा माइल होती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि एक के साथ जो हुआ सो हुआ, अब बाकियों के साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला हुआ, और वो कैसे था आयत देखिएगा, आयत नंबर 31। ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, फिर हमने पैदा की इनके बाद दूसरी कौमें, यानी जिस तरह ये मामला हो गया उसी के बाद फिर अगली कौमों के साथ भी ये मामला हुआ। فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ, फिर हमने भेजा उनके अंदर एक रसूल उन्हीं में से, किसकी तरफ इशारा, कौम आद और कौम समूद। नबी का पैगाम क्या था, अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि मालकुम मिन इलाहिन गैरू, कोई नहीं उसके सिवा कोई माबूद तुम्हारा। बिल्कुल वही मैसेज जो पहले नबी का था, अफला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते। यही जुमला हजरत नूह ने भी बोला था ना। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि तकवा चौकीदार है जो गुनाहों को जिंदगी में आने नहीं देता। तकवा खत्म हो जाता है ना तो इंसान दीनदार होते हुए भी अल्लाह से नहीं डरता। यही बात यहां दिखा दी गई कि अल्लाह का डर बंदे को गुनाहों से रोक लेता है। कौम का जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल वैसा ही मामला है। वकाल अल मलउ मिन कौमिही, और कहा सरदारों ने उसकी कौम के। देखिए वाहिद है ना, तो साफ लग रहा है कि कौम है आज या फिर बाद में समूद मुराद है, यानी हजरत हूद या हजरत सवाले को यही जवाब मिला। क्या किन से मिला? अल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरती, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया और आखिरत की मुलाकात को झुटला दिया। तीसरा उनका वसफ क्या था? व तरफ ना हम फिल हयात दुनिया, हमने खुशहाल बनाया था उनको दुनिया की जिंदगी में। अतरफ ना हूं, पीछे इसका तस्करा नहीं था, बाकी चीजें पिछली कौम के साथ भी थी। यहां इसको देख लीजिए, अतरफ ना हूं, हमने उनको ऐश दिया था, मजाक दिया था, हमने इनको दुनिया की दौलत दी थी। ऐश हमने दिए लेकिन इन्होंने उसी ऐश में पड़कर हमको ही भुला दिया। क्या कहा? नंबर एक, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम्हारी जैसा आदमी है, ये इल्जाम था पीछे भी। याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिन्हु, खाता है ये वही कुछ जो तुम खाते हो, सेम बात हो गई। अब बताइए कि किसी शहर में नबियों के नाम पर या दीनदारों के नाम पर एक अलग स्टोर हो और दुनियादारों के नाम पर एक अलग स्टोर हो, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, वो ये चाहते हैं कि जिस स्टोर से दीनदार शॉपिंग करे ना, वहां जौ हो, सत्तू हो, पुरानी सूखी खजूरें हों और कुछ इस तरह की दो चार चीजें, खत्म। ये जो कुछ हमारे टेबलों पे आता है ये इनके क्यों आए? ये बहुत खाना पीना, ये तो दीनदारी के खिलाफ है। और आप यहां भी देख लीजिए, दीनदारों को लेट डाउन करने का एक अंदाज है कि इनको जरा नीचा दिखा दे, इनको छोटा करके दिखा दे। वह यशरबु मिम्मा तशरबून, ये वही पीता है जो तुम पीते हो। हम भी डिस्टिल वाटर पीते हैं, ये भी डिस्टिल वाटर पीते हैं, अगर ये नेक है तो इसको क्या जरूरत है ये साफ पानी पीने की, ये गंदा पानी पिए और फिर बीमार भी ना हो, क्योंकि ये दीन वाला है। सोच देखिए कितना घटिया करके लोग देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इनकी ये बातें मिलती जुलती हैं क्योंकि इनकी सोच मिलती जुलती थी। अगला इल्जाम क्या लगा रहे हैं? फिर ये बड़े भी अब अपने छोटों को बता रहे हैं कि देखो, वलईन आता तुम बशरम मिसलकुम, अगर तुमने अपने जैसे एक इंसान की पैरवी कर ली, इन्नकुम इज़ल लखासिरून, फिर तो तुम घाटे में ही पड़ जाओगे। वही प्रवोक करने का स्टाइल है कि तुम अपने ही जैसे इंसान की बात ना करो। अब आप देखें कि जो बातें ये नबियों पे लगा रहे हैं, दोनों तीनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन कितना है। जैसे पीछे हज़रत नूह पे सात किस्म की बातें हैं, तो आप देखिए एक तरफ कह रहे हैं जुनूनी है, दूसरी तरफ कहते हैं बड़ा बनना चाहता है। अब आप बताइए, जो शख्स क्रेजी हो क्या उसके अंदर सेल्फ प्रोजेक्शन का शौक होगा? क्रेजी लोग तो सर में मट्टी डाल के बैठे होते हैं, उनके मुंह से राल गिर रही होती है, वो तो इस बात से बिल्कुल बेनियाज होते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो जो इल्जाम से लगा रहे हैं ना, उनके आपस में भी कोई बात मैच नहीं करती, ये मतलब है। लिहाजा असल यहां ये बात कि तुम अगर बशर की बात मानोगे तो उस जैसे होगे, इसके अंदर छुपी हुई बात पता क्या है? हमारी मानो, हम तुम्हारे हुक्मरान हैं, हमारा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा, हम जो कहें वो मानो, इनकी ना मानो क्योंकि ये नेक और ये मौलवी हैं। हाँ, अगर मान ली इन्नकुम इज़ल खासिरून, तो बस तुम तो खसारे में चले जाओगे। मतलब ये कि तुम्हारी जॉब छूट जाएगी, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। आज क्या ये सोच नहीं है कि दीनदारों के पीछे लग के, हाँ अब कर दो घर बेच दो, ये दीनदारों के पीछे लग के अब सारे कारोबार छोड़ दो, बच्चों को घरों में बिठा लो। और आप देखिए कि ये बातें इतनी कड़वी नहीं है जितनी इसके अंदर वो सोच कड़वी है, जो दीन से नफरत की सोच दिखती है। फिर अगली बात में कहते हैं 35, अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबं व इज़ामन, क्या ये वादा देता है तुमसे इस बात का कि तुम मरकर मट्टी और हड्डियां हो जाओगे? अन्नकुम मुखरजून, तो फिर तुम निकाल लिए जाओगे। इस बात को आज के दौर में आप क्या कहेंगे? क्या सोच दी जा रही है? अकीदा आखरत को बिगाड़ रहे हैं ये बड़े लोग जो होते हैं ना। जब देखते हैं ना कि सीधे साधे लोग अंबिया कराम के पीछे लग रहे हैं, तो वो फिर उनको ऐसी बातें देते हैं, देखो दुनिया के बाद तुम कहते हो मर के जिंदा होगे, आज तो तुम्हारे पास चप्पलें भी ठीक नहीं है, आज तो कपड़े भी पटे हुए हैं, तो गोया के जब दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं मिला तो वहां भी नहीं मिलना। लोग दुनिया को इतना खूबसूरत करके दिखाते हैं कि बेचारे सीधे साधे लोग फिर सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई अगर इन दीन की तरफ बुलाने वालों की दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है तो कल आखिरत इनके कहने पर खूबसूरत कैसी होगी। लिहाजा वो कहते हैं कि तुम इस बात में ना आना, हई हात अलिमा तू अदून, नामुमकिन, बिल्कुल ही नामुमकिन है ये बात जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, जिसको लोग कहते हैं इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आज अमल से लोग कह देते हैं, उन्होंने जुबान से कहा था। लोग कहते हैं ऐ जहां मिठा ते दूसरा कितने डिठा, ये दुनिया मीठी है इसको मजा करो। हर दौर में अपने दिल को बहलाने के लिए लोग एक ही किस्म के जवाब देते थे कि इन ही इल्ला हयात न दुनिया नमूत व नहया, ये कुछ नहीं है मगर बस हमारी दुनिया की जिंदगी। मतलब क्या इसका कि दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है। नमूत व नहया, हम खुद ही मरते हैं और खुद ही जिंदा, यानी मदर नेचर है, बस पहिया घूम रहा है, अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं इसमें। और वमा नहनु बिमबूसीन, हम तो दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। जिसको ये यकीन हो गया कि मैंने दोबारा नहीं उठना, वो तो फिर जीने का हक अदा कर देगा ना, तो वो तो गुनाहों का भी हक अदा कर देगा। यही सोच आज लोगों को गुनाहों पे माइल करती है। मौज मस्ती ऐश ये वो क्यों, वो कहते हैं मौज कर लो, दुनिया एक ही है, बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस्त। तो लिहाजा हम तो दोबारा नहीं उठेंगे, रह गया ये दीवाना शख्स। तो इन हुआ इल्ला रजुलन इफ्तरा अलल्लाह कजीबा, ये नहीं है मगर एक ऐसा शख्स जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर। ये ऐसी झूठी नबूवत के दावे हैं, रिसालत की बातें। वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, हम इनकी बात नहीं मानने वाले। क्या आपको एक एक जुमले से बड़ाई का एहसास नहीं झलक रहा? कैसे बड़े थे, डंके की चोट पे कहते हैं हम नहीं मानेंगे इनकी बात, हमने इसको नहीं मानना। अच्छा सवाल पैदा होता है, सारी बातें तो ठीक है, ये नबी को इंसान क्यों नहीं मानना चाहते थे? इसलिए कि अगर नबी को इंसान माना तो फिर वो सारे काम हमें भी करने पड़ेंगे जो नबी करता है, क्योंकि हम कह सकेंगे कि नबी भी इंसान है तो तुम भी इंसान हो। फर्क समझ आ रहा है? आज के दौर में लोग क्या कहते हैं, दीनदारों को बड़ा समझो, और फिर कहते हैं उनकी क्या बात है जी, वो तो माशाल्लाह बड़े पहुंचे हुए, हम तो गुनाहगार लोग हैं। मतलब क्या होता है कि हम इनको बड़ा और बना दें ताकि जो कुछ ये कर रहे हैं हम उसे एग्जेम्प्टेड हैं। राइट, क्लियर हुई है ये बात? इंसान मान लिया तो ये मुमकिन है ना कि जो ये कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। तो इसको इंसान ही ना मानो ताकि कल ये कह सकें कि जो ये कर रहे हैं वो हमारे तो बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल वही सोच है, एग्जैक्टली वही सोच है कि जी उनकी तो बात ही ना करें, वो तो नबी थे, वो तो जी अबू बकर ही थे, वो तो उमर ही थे, वो गोश्त पोस के इंसान थे, उनको भी तकलीफ होती थी, चुटकी काटो तो उनको भी दर्द होता था। लेकिन लोग ये बात इसलिए कहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन दे दो, हम तो ये कर नहीं सकते। ये तो आज भी देखें ना आप, अपने बच्चों में से किसी बड़े बच्चे को कोई काम करता देखें तो आप छोटे बच्चे को कहेंगे बेटा देखो बड़ा भाई कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तो आप देखिएगा वो बच्चा भी कोई ना कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा देगा, चूंकि उसको आपने बहुत टाइम दिया, चूंकि वो बड़ा है, चूंकि आप उसको करती हैं वो क्यों नहीं करेगा, ऐसा है ना, चूंकि उसका कमरा अलग है मुझे तो छोटे भाई के साथ सोना पड़ता है इसलिए मैं नहीं कर सकता। इंसानों का एक वीक पॉइंट है कि अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर लेने की बजाय दूसरे पर डालता है। और यही बात इधर समझ में आती है कि हम इस नबी को इंसान नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मान लिया तो फिर समझो कि हमें वो सब करना पड़ेगा। देखिए ना, फरिश्ता होता नबी तो वो पांच छोड़िए 50 नमाजें पढ़ता, हमें कहा जाता आप भी नमाज पढ़ें, देखें अल्लाह के नबी पढ़ते तो हमने क्या कहना था, वो तो जी फरिश्ते हैं वो पढ़ सकते हैं हम तो नहीं पढ़ सकते। तो अब इसका आगे से हम क्या जवाब देते, बाकी ठीक है भाई फरिश्ते ही पढ़ सकते हैं, इंसानों के तो ये बस की बात नहीं है। वो देखो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी कितनी सादगी से की, तो हम कहें अच्छा नहीं जी वो तो अल्लाह के नबी हो तो फरिश्ते हैं वो तो कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि नबी को बिल्कुल जज्बाती तौर पर अपने बराबर समझना। ऐसे लगता है कि जैसे नबियों के दिल में पत्थर था, उनको अपने जाती गम नहीं चुपते थे, दुख नहीं चुपते थे, बीमारियां परेशानियां नहीं दुखती थी, और हम चूंकि वेरी सेंसिटिव। असल में मैं फील करती हूं अक्सर जितना आप अपनी जात के गिर्द घूमेंगे ना उतना आप अपनी जात को सोचेंगे, उतना आप तकलीफ महसूस करेंगे, उतने आप सेंसिटिव हो जाएंगे, उतने बीमार हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे। एक दफा अपने आप को कहें कि मैं कुछ नहीं हूं। ये जो घरों में मासियां काम करती हैं, कभी आपने सोचा कई दफा आपसे भी दुबली पतली उम्र की छोटी या बस दफा बूढ़ी होती हैं, तीन घरों का काम कर जाती हैं शाम तक, आप सिर्फ अपने कमरे को नहीं साफ कर सकते क्योंकि मैंने सोच लिया मैं नहीं कर सकती, मैं बड़ी, मेरे जेब में पैसे हैं, मैं कर सकती हूँ अफोर्ड, मैं लूंगी। हम अपने घर का काम कर लें अगर किसी दिन, मिसाल है, तो फिर देखिए जो हम सुनाते हैं उसके बाद। और वो 3 घरों का करके बेचारियां सेहतमंद चली जाती हैं, वो इतना वॉक भी कर लेती हैं। हम यहाँ से जानो कहते हैं गाड़ी भेजो फिर हम आएंगे। ये कल्चर हमने यहाँ नहीं अभी इतना देखा, आप अपने मुल्कों में जाके देखिए, आपको ये क्लास सिस्टम समझ आ जाएगा क्या उन गरीबों का और उन क्या अमीरों का हाल है। गए से गए गुजरे दौर में एक घर में 4 से 5 मासियों से कम मैंने नहीं कहीं देखी। चले अच्छा, एक तो बहाना है कि गरीब लोगों की मदद हो जाती है, लेकिन जब एक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो असल में ये अपनी बड़ाई है, मैं क्यों नहीं कर सकती, कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आप देखेंगे कि 1-2 महीना लगेगा, आप उससे भी ज्यादा इंशाल्लाह करने लग जाएंगे।